कृतार्थ हो जाता है। और फिर 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी स्वभाव क्या होता है, तीनों प्रकृति के गुण तो बताए लेकिन साथ में दैवी स्वभाव आसुरी स्वभाव क्या होता है उसको स्पष्ट करते कि आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण क्या होते हैं। अभय, शुद्ध अंतकरण, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दानशीलता, इंद्रिय संयम, यज्ञ यानी जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध मुक्तता, त्याग, शांति, पर चिंतन व पर दर्शन से मुक्त, सर्व के प्रति दया एवं करुणा भाव, लोभ मुक्त, मृदुता, विनयशीलता, दृढ़ संकल्पतारी, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। ये हैं आध्यात्मिक जीवन जीने वाले इस एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण। और दूसरी ओर आसुरी प्रवृत्ति वाले कौन होते हैं? असुर माना सचमुच कोई बड़े बड़े सींगों वाले दांतों वाले मनुष्य इस संसार में नहीं होते हैं, लेकिन जिसकी मनोवृत्तियों में प्रवृत्ति में आसुरी पना है उसका गुण स्पष्ट करते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के मत में यह संसार मिथ्या है, निराधार है और ईश्वर रहित है। वे यही मानते हैं कि यह संसार कामेच्छा से उत्पन्न होता है, विषय उपभोग के ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है और उनके सिवा इस संसार में अन्य कोई कारण नहीं है। ऐसे कभी न तृप्त होने वाली कामनाओं से भरपूर दंभी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर, अज्ञानी और मद से युक्त अशुद्ध संकल्प वाले मोहग्रस्त, दुष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त रहने वाले मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूर मनुष्य केवल संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। उनमें न पवित्रता है, न उचित आचरण है और न ही सत्यता पाई जाती है। ये आसुरी लक्षण वाले हैं। और आगे उसके लक्षणों को वर्णन करते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर विषय उपभोग की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, जिस कारण उनकी सभी से शत्रुता बढ़ती जाती है और वे अपने शत्रुओं को मारना चाहते हैं। वे इसी भ्रम में जीने लगते हैं कि वे सर्व संपन्न, उपभोगी, सिद्ध पुरुष, बलवान और सुखी हैं। वे सोचते हैं कि उन जैसा धनवान कोई नहीं, वे श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं यही मानते हैं। इस तरह वे लोग अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकार के नशे में चूर अपने नाम, मान और शान के लिए यज्ञ और दान भी करते हैं। यज्ञ भी किस लिए करते, दान भी किस लिए करते, अपने ही नाम, मान, शान के लिए। अज्ञानता से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में फंसे विषय उपभोग के आसक्त ये लोग घोर अपवित्र कर्म कर नरक समान जीवन जीने वाले अहंकार, बल, पाखंड, कामी और क्रोधी, सर्व की निंदा करने वाले ये लोग मनुष्य आत्मा और परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। इस प्रकार द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को बारंबार आसुरी प्रवृत्ति वाली योनियां ही प्राप्त होती है, जिसे दूसरे शब्द में नरक समान जीवन कहते हैं। ये उनके लक्षण स्पष्ट किए। और फिर बताया भगवान ने कि इस नरक के तीन द्वार हैं, इस नरक में जाने के तीन द्वार हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। इससे आत्मा का पतन होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए और जो इनसे बचे रहते हैं वे आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तथा वे परम गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए विधि विधान को ज्ञान युक्त जानकर कर्म करना चाहिए। विधि विधान को ज्ञान युक्त हो करके समझना चाहिए, जानना चाहिए और कर्म करना चाहिए, उसको कहेंगे समझदार। फिर श्रद्धा का विभोग, तो 17वां 18वां अध्याय जो है आगे देखेंगे, और एक सेशन है अपना, तो उसमें 17वां 18वां अध्याय जो है उसको देखेंगे कि जिसमें भगवान ने बहुत सुंदर बातें कही है। लेकिन अब हम सभी ध्यान में बैठेंगे, अभ्यास करना है, अभ्यास से ज्ञान ध्यान श्रेष्ठ है, तो इसीलिए अभी थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। और जैसे हम आपको विचार देते जाए, परमात्मा से वो शक्ति को प्राप्त करना है, स्वयं को यही समझना है कि चलो कितने भाग्यशाली है हम जो यहां पर पहुंच गए, ईश्वर के सानिध्य में पहुंचे हैं, और उस परमात्मा से शक्ति को प्राप्त करना है। आज सुबह अमृत वेले उठे थे आप सभी, आए थे यहां पर योग करने के लिए, अच्छा लगा कि नींद आई थी, और सारा दिन फिर उसका इफेक्ट रहा कि भाई जल्दी उठते तो नींद आती है, ये रहा कि नहीं इतना ही फ्रेश है अभी शाम तक, फ्रेश है ना सभी। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे, और कल का सुबह का भी आप अमृत वेले आएंगे ना, हाँ जरूर। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम सभी बैठते हैं ईश्वर के याद में। और जैसे मैंने सुबह भी कहा कि मन को घूमना अच्छा लगता है, ये नमः शाम के समय हम उसको कहाँ ले चलेंगे, घूमने ले चलेंगे ईश्वर के पास में, ईश्वर के सानिध्य में, जहां उसको आनंद मिलता है, जहां से वो सोम रस प्राप्त करते हैं, हजम करने की शक्ति प्राप्त होती है और आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, सशक्त करेंगे। तो कुछ क्षणों के लिए ध्यान के समय मन और शरीर दोनों की एकाग्रता होनी चाहिए। स्वस्थ होकर के बैठे, एकदम सीधा, पीठ सीधी हो, अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, ब्रकुटी की मध्य में एक ज्योति पुंज के रूप में। यह शरीर मेरा मंदिर है, इस मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय की अधिकारी हूं, मन बुद्धि संस्कार की भी अधिकारी हूं। नमः शाम के समय चलते हैं एक यात्रा पर, पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, परम धाम में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। अंतर चक्षु से स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं, जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। अपने अनादि सतोगुण स्वरूप में हूं। मैं आत्मा सतोगुणी स्वरूप हूं। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों ओर एक आभा मंडल की तरह फैला हुआ है। उस प्रभा मंडल में स्वयं को देख रही हूं। कितना सुंदर स्वरूप है ये मेरा। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित, मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति के वाइब्रेशन मेरे चारों ओर फैले हुए हैं। इस शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। जो सुख अति इंद्रिय सुख है, इस शांति में परमानंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। ये सतोगुण इंद्रधनुष के सप्त रंगों के आभा मंडल को विकसित करता है। इंद्रधनुष के सप्त रंगों के प्रभा मंडल में मेरे सत्वगुण का प्रवाह, चारों ओर फैल रहा है। ये प्रभा मंडल एक सुंदर कवच है। जिस जिसमें मैं अपनी सात्विक प्रकृति को विकसित करती हूं। ये सत्व गुण मेरी बुद्धि को निर्मल करती जा रही है। जिसमें ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। धीरे धीरे मैं स्वयं को अपने पिता परमात्मा के सन्मुख देख रही हूं। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी सूक्ष्म ते सूक्ष्म नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप है। जो सूर्य के समान तेजो मैं है, चंद्रमा के समान शीतल प्रकाशमान है, परम सत्य स्वरूप है, परम पवित्र स्वरूप है। सर्वशक्तिमान है। जिनका असीम ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, इस संसार में परमात्मा जैसी अभिव्यक्ति किसी की नहीं है। जो सर्वश्रेष्ठ हस्ती है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, उस दिव्य स्वरूप पर मैं अपने ध्यान को एकाग्र करती हूं। और परमात्मा से सर्व शक्तियों के किरणों को स्वयं में समाती जाती हूं। परमात्मा से सर्वसमर्थी मैं स्वयं में प्राप्त कर रही हूं। परमात्मा परम पूजनीय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु है। परमात्मा शक्ति से धीरे धीरे मेरे मन का मैल साफ होता जा रहा है। और मेरा मन शुद्ध होता जा रहा है। बुद्धि निर्मल होती जा रही है। संस्कारों में दिव्यता समाती जा रही है। कितना सुंदर अनुभव है ये। पिता परमात्मा भाग्य विधाता है। और हृदय में अनन्य भाव को लेकर मैं उस भाग्य विधाता के शरण ग्रहण करती हूं। मेरा मोह और अज्ञान दूर हो रहा है। ज्ञान के प्रकाश से मेरी बुद्धि की प्रभा चमकने लगी है। परमात्मा पिता नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करते जाते हैं। मैं स्वयं में सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करती जा रही हूं। कितनी न सौभाग्यशाली हूं जो परमात्मा के असीम कृपा की पात्र आत्मा बनती जा रही। परमात्मा पिता ने मुझ आत्मा के ज्ञान के दिव्य चक्षु खोल दिए। दिव्य चक्षु का वरदान दिया है, जिस दिव्य चक्षु से मैं परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देख रही हूं। मन का सारा बोझ समाप्त होता जा रहा है, मन हल्का अनुभव कर रहा है, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। परमात्मा से सामर्थ्य को प्राप्त करते मैं आत्मा समर्थ स्वरूप बनती जा रही हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में प्रकृति के मध्य में स्थित करती हूं। ये शरीर मेरा कर्म करने का क्षेत्र है। सर्व कर्मेंद्रिय पर अधिकार प्राप्त कर इस कर्म क्षेत्र में ज्ञान युक्त कर्म करने हैं। परमात्मा शक्ति को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करती हूं। और अपने संबंधों में, कर्म में, व्यवहार में परमात्मा शक्ति को प्रवाहित करते जाना है। जिससे व्यवहार कुशलता, संबंधों में मधुरता और सही रूप से कर्मयोगी जीवन बना सकूं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आज हमने 16 अध्याय तक ये गीता की बातें सुनी और आगे फिर एक सत्र है, तो उसमें 17वां 18वां अध्याय जो बहुत गहराई वाला है उसको समझेंगे। शांति।